देखिए डेफिनेशन की बात करें या हम इंट्रोडक्शन की
जी.
बात करें, पर्सनालिटी को हम कहते हैं परसोना है.
sure,
जो जैसे मास्क है जो हम लेके चलते हैं
जी.
कई कहते हैं कि ये हमारे ट्रेट्स हैं जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होते हैं, हम कैसे बात करते हैं, इंटेलिजेंस कैसा है, हमारी नेचर कैसी है. कई लोग बोलते हैं कि पर्सनैलिटी इस बात पर डिफाइन होती है कि हमारा आकार कैसा है, हम छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं. बहुत अलग अलग तरह से हम पर्सनैलिटी को
डिफाइन कर सकते हैं.
अगर हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात करें, हम लोगों के बारे में बात करें, तो हम कई बार देखते हैं कि हम सब बहुत सारे तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, पर उसी तरफ उन्हीं कॉमनैलिटीज के विपरीत हम जो हैं बहुत ज्यादा डिफर भी करते हैं. मिलते जुलते हम सभी के दो आंख, नाक,
सब में पाया जाता है,
ठीक है. हम सब जो हैं वो सोशल इंटरेक्शंस करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम लोग का नेचर, हम लोगों का आदत, हमारा इंटेलिजेंस या हमारा जो कैलिबर है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है. तो ये चीजें हैं कि हम किस तरह से ये समझ सकते हैं कि लोग क्यों आपस में इतनी कॉमनैलिटीज होने के बाद भी जो हैं वो डिफर करते हैं बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स पे. ये चीज़ों ने इस तरह के जो व्यू पॉइंट्स हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारी ज़रूरतें सबकी, जो बेसिक नीड्स हैं वो सबकी सेम है, फिर भी हम लोग एक दूसरे से जो है अलग हैं, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एक ये टॉपिक लगता है सब लोगों की ये जानना. जैसे मैंने कई बार देखा है कि अगर किसी को आप ये कहो कि आप किस बैकग्राउंड से हो, अच्छा आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, मतलब सबसे पहला लोगों का आज तक मुझसे यही क्वेश्चन रहा है 99% ऑफ द टाइम, अच्छा मैम आप मेरा चेहरा बता के पढ़ के बताइए कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है. तो सब लोग बहुत इनक्विजिटिव हैं, बहुत जानना चाहते हैं कि हम कैसे हैं, हम ऐसे क्यों हैं या हम वैसे नहीं हैं. देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, व्हाई वी डिफर फ्रॉम अदर्स एंड व्हाई वी आर सेम विद सम अदर पीपल अराउंड अस. किसी के साथ हम मिलते जुलते हैं, किसी से हम बिल्कुल विपरीत होते हैं. अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम बात करें तो हमारे अलग अलग पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग होते हैं. जैसे वही कहते हैं कि कोई किसी चीज को गिलास आधा भरा है या आधा खाली है,
देखने का नजरिया है.
तो हम अपनी सोच में, अपने देखने के नजरिए में, अपने पहनावे में, अपने थॉट प्रोसेस में बहुत तरह से दूसरों से जो है वो जो डिफरेंट होते हैं. जैसी मैं हूँ वैसी आप नहीं है, जैसी आप हो वैसी मैं नहीं हूँ, और कोई और भी हम जैसा नहीं है. कुछ लोग होते हैं जिनसे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है क्योंकि वो हम जैसे होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद इनके साथ
हमारी ज्यादा बनेगी.
तो क्योंकि हमारे ट्रेट्स जो हैं वो काफी मिलते हैं. कई लोगों को हम देखते ही कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल हैं, ये जो व्यक्ति हैं, इनको देखते ही बहुत अच्छा एक अनुभव होता है. इनका चेहरे पे ऐसी मुस्कान रहती है, बहुत जॉली हैं, माहौल को बहुत अच्छा बना देते हैं, तो उनके लिए अच्छा लगता है. कुछ लोग होते हैं जिनको हमें देख के लगता है कि ये व्यक्ति हमेशा उदास रहने वाला है, हमेशा कंप्लेन करने वाला है. तो दैट मीन्स देयर आर डिफरेंसेस इन आवर पर्सनैलिटी. और इन्हीं डिफरेंसेस की हम लोग जो हैं वो आज चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बहुत अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं जो अपने अपने तरीके से जो हैं वो साइकोलॉजी को डिफाइन करने, पर्सनालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करती हैं. जैसे कि हम कैरन हॉनी की थ्योरी की बात करेंगे या हम साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव की बात करेंगे. कौन कौन से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं या डिफरेंट थ्योरीज हैं जो हमें बताती हैं कि पर्सनालिटी एक्चुअली में क्या है. तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम एक तो हम बेसिकली पहले ये जानना चाहेंगे कि पर्सनालिटी होता क्या है अगर हम इसे डिफाइन करना हो. फिर हम लोग बात करेंगे कि साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव क्या है, कैरन हॉनी का पर्सपेक्टिव क्या है, कार्ल गस्टव यूंग का क्या है, या फिर जो हमारा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो क्या है. फिर हम लोग इसके साथ ही जो इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, अगर पर्सनालिटी की व्यक्तित्व की गुण जो हम कहते हैं कि आप में सात्विक गुण है, तमस गुण है या राजस गुण है, तो उसके बेसिस पे हम लोग जो हैं वो पर्सनालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. और हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है कि अगर हम ऐसे हैं तो क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कई बार कहते हैं कि आपका जो जीन्स हैं, जैसे आप होते हो, आप अपने एनवायरनमेंट, आप अपने जीन्स से लेके आते हो. कई बार हम कहते हैं कि आपको जिस भी तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए आप वैसे बन जाते हो. तो हम ये भी फैक्टर्स की बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं. देखिए, जैसे कि हम लोग पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो पहले तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न, जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स कैसे हैं हमारे, हम कैसे सोचते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, तो बेसिकली हम इन्हीं सब चीज़ों की बात करते हैं। इसके साथ साथ ही हम ये भी बात करते हैं कि हम सबके सोचने का तरीका, हम सबके महसूस करने का तरीका, हम सबके आइडिया सब कुछ डिफर करता है। तो जब हम पर्सनैलिटी की बेसिकली बात करते हैं तो उसका मतलब होता है पर्सनैलिटी इज़ द टोटैलिटी ऑफ द पर्सन, कि इन टोटल अगर आपको इस इंडिविजुअल को डिफाइन करना हो, जैसे मुझसे कोई पूछे कि मैं आपको कैसे डिफाइन करूँगी, तो वन वर्ड में मैं आपके लिए क्या वर्ड बोलूँगी, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत हसमुख है, या ये हमेशा रोती रहती है लड़की है, मतलब कुछ भी। एक आप एक एज अ होल किसी इंडिविजुअल को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अगर मैं ये कह दूँ कि दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, हमेशा खुश रहता है, हर एक सिचुएशन पे चेहरे पे मुस्कान रहती है, तो उसके साथ साथ वो हैप्पी गो लकी का जो टैग मैंने एक लेबल जो किसी को लगा दिया, वो उसके साथ जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच्ड होंगे उसको अल्टीमेटली उसने बता दिया कि इसमें ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर हम कह दें कि ये इंडिविजुअल इज अ सैड पर्सन, ये हमेशा परेशान रहता है, तो बाकी कौन कौन से उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो अंडरस्टूड है। तो इन टोटैलिटी हम एक इंडिविजुअल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि हम कैसे किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। अब ये जो पर्सनैलिटी का जो वर्ड है, ये एक्चुअली ये है कि ये जो थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी हैं, ये हम बात करते थे कि ग्रीक ड्रामा में ना हम ये कहते थे कि पर्सोना, जो लोग एक मास्क पहनते थे वो ड्रामा में, उसे हम कहते थे पर्सोना, कि आप एक मास्क पहन के आते हो, तो वहाँ से ये वर्ड आया है। और पर्सनालिटी थ्योरीज जो है वो ये कहती हैं कि पर्सनालिटी जो होता है वो एक इंडिविजुअल का क्रक्स है, एसेंस है, क्या इंडिविजुअल है उसके बारे में हमें बताता है और उसकी ट्रू नेचर के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि अगर मैं एक ही तरह से बता दूं कि सबिया इज़ अ हैप्पी गो लकी पर्सन, तो दैट मीन्स शी रिमेन्स हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा अच्छे से बात करती है, हमेशा हसमुख है, तो इसके साथ और भी आपके जो पर्सनालिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमें पता चल जाती हैं। पर्सनालिटी को समझना जो है वो कई बार बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क
हो जाता है।
वो इसलिए होता है क्योंकि किसी सिचुएशन में हम बहुत कूल तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन कोई और ही सिचुएशन होती है जब हमें लगता है कि हम तो वो हैं ही नहीं, हम तो कुछ और ही तरीके से रिएक्ट करें, वो सिचुएशनल कई बार हो जाता है। तो पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना जो है वो एक आसान जो है टास्क नहीं है। बहुत सारे मल्टीपल थ्योरीज हैं और बहुत सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं जो अपने अपने तरीके से जो है वो पर्सनालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या क्या इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, तो उन सब की वो बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में यही कि हम एक टोटैलिटी में किसी इंडिविजुअल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव जो है इट वॉज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रॉयड और ये बहुत ही नोन नेम है सिगमंड फ्रॉयड का पर्सनालिटी थ्योरीज की जब हम लोग बात करते हैं। सिगमंड फ्रॉयड ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो था, बहुत ज्यादा एम्फेसिस जो था उसने अनकॉन्शियस और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे दिया था, स्पेशली अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। उसने कहा था कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है हमारे अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड में। उसने सिगमंड फ्रॉयड जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस सेक्सुअल और एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स को दी थी कि हमारे ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स क्यों होते हैं हमें, या एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स क्यों होते हैं, इसका हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के साथ एक कनेक्शन जो है वो रहता है। ये थ्योरी जो थी ये जो सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरीज और उनके आइडियाज हैं ये अर्ली 19th सेंचुरी में जो थे वो प्रोपाउंड हुए थे, लेकिन आज भी ये आइडियाज काफी हद तक जो हैं वो यूज होते हैं। सबसे पॉपुलर थ्योरी हम इसको कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड उन्होंने कहा था कि जो हमारा माइंड है, हमारा माइंड एक आइसबर्ग की तरह है, जैसे कि आइसबर्ग को उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस में डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो आइसबर्ग का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कॉन्शियस लेवल है। कॉन्शियस लेवल मतलब जो मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, आपको सब पता है आपका नाम क्या है, आप अभी क्या कर रहे हैं, दैट इज यू आर इन अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। तो उन्होंने कहा कि जो आइसबर्ग, अगर आप उसका ट्राइंगल आइसबर्ग का आप इमेजिन करें, तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो कॉन्शियस पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी है, मतलब वो आपका उतना आपका पर्सनैलिटी कॉन्शियस पार्ट है। फिर उन्होंने कहा कि जो आइसबर्ग के बीच वाला हिस्सा जो है वो आपका प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस पार्ट है। सबकॉन्शियस का पार्ट का मतलब है, जैसे कि अगर कुछ चीज़ें जो आपके अभी डायरेक्ट अवेयरनेस में नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे तो आपके अवेयरनेस में आ जाएंगी। जैसे कि आपके साथ क्लास 8 में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था, या क्लास 10 में आपका कोई एक ऐसा इवेंट जो आप मुझे बता सकते, मतलब दैट इज अ सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ मेमोरी, दैट इज देयर इन योर मेमोरी, लेकिन वो एकदम से आप याद नहीं कर सकते हो, वो थोड़ा सा जोर डाल के फिर आपको याद आ जाएगा, मतलब ध्यान में रहती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस पार्ट है, ये बहुत कम जो पार्ट है वो आपका पर्सनालिटी का बताता है, आपका जो मेजर पर्सनालिटी का पार्ट होता है वो अनकॉन्शियस में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आइसबर्ग के अंदर वाला हिस्सा होता है, जो आइसबर्ग सी के अंदर होता है, वो बेसिकली ज़्यादा सबमर्ज सी के अंदर होता है, तो वो आपका अनकॉन्शियस पार्ट होता है, और वो अनकॉन्शियस पार्ट जो आपका उसमें जो भी मेमोरीज हैं, जो भी इवेंट्स हैं, वो डिफाइन करते हैं कि वो किस तरह के मेमोरीज और किस तरह के इवेंट्स हैं, और वो आपके लाइफ को और आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो तीन तरह से डिफाइन हो सकती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। लेकिन जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड है वो सबसे ज़्यादा हमारे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हमारे कॉन्शियस में राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, प्री कॉन्शियस में देर आर सम थिंग्स जो हम कभी भूले नहीं हैं, वो हमें हमेशा याद रहती हैं, थोड़ा जोर डालेंगे तो याद रह जाती है। लेकिन अनकॉन्शियस पार्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जो इतने पेनफुल रहे होते हैं कि हम उनको कहीं ना कहीं दबा देते हैं, हम सोचते हैं हम वो भूल गए हैं, हम भूल जाएं, और हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो हम भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है जब उन डिज़ायर्स को जो है वो रिप्रेस कर लेता है, दबा है, तो वो इनडायरेक्टली हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ अगर अर्ली एज में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हो जाएं, तो वो कई बार उसको दबा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों का इफेक्ट जो है वो लाइफ टाइम कैसे ना कैसे जो है वो आता है। जैसे कि एक हमने एक मूवी आई थी, एक था विलन मूवी में क्या था कि वो जो उसमें एक विलन जो लड़का दिखाया है, वो अपने वाइफ के साथ बहुत प्यार से रहता था, लेकिन उसकी वाइफ जो थी वो उसको बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करती थी और मिसबिहेव
करती थी,
लेकिन वो अपनी वाइफ को इतना प्यार करता था कि वो अपने वाइफ के मिसबिहेवियर को हमेशा जो इग्नोर करके हमेशा उसको प्यार देना चाहता था, लेकिन वो जो मिसबिहेवियर था वो अनकॉन्शियसली उस इंडिविजुअल वो दबाता था उस चीज को, वो उसको इतना इफेक्ट करता था कि उसको अपना मैनिफेस्टेशन, उस गुस्से को मैनिफेस्टेशन चाहिए होता था। तो वो कैसे मैनिफेस्ट होता था कि अगर बाहर की कोई भी महिला उस पे अगर जरा सा भी उसको डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगी तो वो उसका मर्डर कर देगा। तो व्हाट इज दिस दी पर्सनालिटी, व्हाट वाज हिज पर्सनालिटी, एंड द रीजन फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी वाज द अनकॉन्शियस एस्पेक्ट, जो उसे नहीं पता था कि उसको इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो उसे इफेक्ट कर रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कई बार हम लोग कहते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये हमेशा गुस्से में रहते हैं, लेकिन अगर कभी आप उनके लाइफ सिचुएशन के बारे में जानो तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स या बचपन से फैमिली फैक्टर्स ऐसे रहे हैं, पेरेंट्स से कितना प्यार मिला है, नहीं मिला है, वो सब चीज़ें मिलके जो हैं अनकॉन्शियसली बच्चों को लाइफ टाइम तक इफेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ इस तरह से फ्रॉयड जो थे वो अपने थ्योरी को रखते थे और वो समझाना चाहते थे। इसी में उन्होंने आगे चलते हुए पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी पर्सनालिटी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी पर्सनालिटी जो है वो तीन तरह से बनी है, उसे कहते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। इड का मतलब है कि इड ऑलवेज वर्क्स ऑन द पर्सनालिटी प्रिंसिपल, और जो सुपर ईगो है वो हमेशा मॉरल प्रिंसिपल्स पे बात करती है। तो जब हम प्लेजर और मॉरल की बात करें तो इड का मतलब है कि जैसे छोटा बच्चा होता है वो कहता है कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, ये खिलौना मुझे रात के 11 बजे चाहिए तो चाहिए, वो ये नहीं सोचता कि माँ बाप की जेब में पैसा है या नहीं है, ला सकते हैं, दुकान खुली है या नहीं है, वो प्लेजर प्रिंसिपल है, उसको कुछ नहीं लेना देना। तो इड वो पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी होता है, सुपर ईगो इज द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी विच वर्क्स ऑन द मॉरल प्रिंसिपल्स, कि ये बात गलत है, मैं इस समय अपने माँ बाप को परेशान कर रहा हूँ और मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ईगो पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी है वो दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। जैसे कि इड को वो कहेगा कि इस समय जो है हम लोग इस समय खिलौना नहीं ले सकते हैं क्योंकि अंधेरा है, रात है, दुकान बंद होगी. लेकिन सुपर ईगो को भी वो बैलेंस करता है, कहता है कि वो इतना गलत मेरा डिमांड नहीं है कि मुझे खिलौने की डिमांड करनी ही नहीं चाहिए. मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं जब एप्रोप्रिएट टाइम होगा तब करूंगा. तो दैट इज ईगो इज बैलेंसिंग बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो. ये मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया है. अगर हम अपनी बात करें तो हम में भी ये तीनों प्रिंसिपल्स जो हैं कहीं ना कहीं आते हैं. जैसे इड, हम लोग की कभी ना प्लेजर होता है. जैसे कि अगर आप बात करें तो जब हम अपनी कुछ ऐसी डिज़ायर्स होती हैं जिनको हम रेजिस्ट नहीं कर पाते, हमको लगता है कि अगर मुझे ये वाली चीज़ चाहिए. अगर मैं ड्रग एडिक्ट्स की बात करूं, तो ड्रग एडिक्शन में कैसे पढ़ने शुरू करते हैं आप, क्योंकि आपको लगता है इससे तो मुझे ऐसा प्लेजर मिलेगा कि ये वाला ड्रग लेके मैं पता नहीं कौन से मतलब क्लाउड नंबर 9 में पहुंच जाऊंगी, मैं 7वें आसमान में पहुंच जाऊंगी. और वो प्लेजर प्रिंसिपल पे हम काम करने लग जाते हैं. वो प्लेजर प्रिंसिपल पे जब हमने अपने आप को गिव इन कर दिया, उस प्लेजर प्रिंसिपल में चले गए और हमने कभी अपने मॉरल्स को और अपने ईगो को बैलेंस नहीं करने दिया, तो हमारा पर्सनैलिटी इम्बैलेंस्ड जो है वो हो जाता है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो इन्होंने फ्रॉयड ने बात की थी, उन्होंने अपने केस स्टडीज की बेसिस पे, जैसे उनके पास डिफरेंट केसेस आते थे लोगों पे, तो उन्होंने उन लोगों के केस स्टडीज और उनकी केस हिस्ट्रीज लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की. और उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती हैं, उन्होंने उन्हें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहा, जिसमें सबसे पहली स्टेज उन्होंने कही कि 0 से 18 जब 0 months 0 days टू 18 months, उसे उन्होंने कहा ओरल स्टेज. ओरल स्टेज में जो है वो बच्चा जो है उसको सबसे ज्यादा प्लेजर अपने माउथ से मिलता है, और वो इसीलिए एक्टिविटीज करता है, सकिंग वाली एक्टिविटीज. इसी टाइम बच्चा जो है वो माँ का दूध पीता है, सारा उसका जो प्लेजर प्रिंसिपल होता है वो माउथ से वर्क करता है. तो बहुत जरूरी है कि ये जो ओरल स्टेज है उसमें उसकी जो सकिंग की डिजायर है वो फुलफिल होनी चाहिए. अगर वो नहीं होती है तो बड़े होके वो किसी और से बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कहते हैं स्मोकिंग में, जो बच्चों का नहीं होता फिर वो स्मोक जो है वो उसकी हैबिट उनको ज्यादा लगती है. एनल स्टेज वो वाला स्टेज होता है जब बच्चों को प्लेजर जो है वो अपने बाउल मूवमेंट से मिलता है, पॉटी ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं. ये स्टेज होती है 18 से 36 महीने की स्टेज. तो इस टाइम पे बच्चों का जो प्लेजर है वो पॉटी ट्रेनिंग में के अराउंड रिवॉल्व करता है. फिर बच्चों की स्टेज आती है फैलिक स्टेज. फैलिक स्टेज होती है 4 साल से 6 साल की स्टेज. इसमें उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की बात की थी, ऑल्दो हम वो यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं, बट एक टर्म है. या इस समय में बच्चों के जो जितना भी प्लेजर है उनको अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके फॉन्डलिंग करके मिलता है. और ऐसा नहीं है कि उनको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, उनको सिर्फ उस, क्योंकि दैट इज समथिंग वेरी सॉफ्ट एंड दे एंजॉय डूइंग इट. तो ये उनका वो वाला स्टेज होता है फैलिक स्टेज. फिर आता है लेटेंसी स्टेज. जो स्टेज आता है 7 years to 11 years ऑफ एज. ये जो 7 से 11 साल तक की उम्र होती है, इस समय में बच्चे अपने सेक्सुअल डिजायर्स को एक तरफ रख के अपना जो सारा फोकस है वो लगाते हैं अपने सोशल डेवलपमेंट पे, अपना एजुकेशन पे, पढ़ाई पे,
करियर पे.
तो करियर मतलब पढ़ाई करने पे, सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स क्या है, उसे हम बच्चे थोड़े समझदार हो गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं. तो ये लेटेंसी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है. फिर आता है जेनिटल स्टेज, जो आता है आपका जब आपका प्यूबर्टी आता है, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब बच्चे 12 साल की उम्र से आगे की स्टेज जो होती है. इस समय में प्लेजर जोन जो होता है वो अगेन दैट शिफ्ट्स टू योर जेनिटल्स, और आपके जो सेक्सुअल इंटरेस्ट हैं वो ज्यादा हाई होते हैं. तो इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया कि हम पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है. इसी में उन्होंने कहा कि हम लोग अपने पर्सनैलिटी में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि कोई चीज हमारे लिए पेनफुल लगती है ना, तो हम उसको किसी तरह से उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. अगर लेमैन लैंग्वेज में कहूँ
बिल्कुल,
तो उन्होंने कहा कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं. एक उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म दिया जिसे हम कहते हैं डिनायल. डिनायल का मतलब है कि हम डिनाई कर देते हैं. जैसे हम बोलते हैं जैसे कि वी विल डिनाई समथिंग, मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, लेकिन आई विल डिनाई इट कम्प्लीटली, ऐसा है ही नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग. तो इसे कहते हैं डिनाइल की स्टेज, व्हेन यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. फिर आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इमोशनल इम्पल्सिस जो है ना वो आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो. जैसे कि आपको गुस्सा चढ़ा है अपनी बीवी पे, लेकिन आप गुस्सा निकालते हो अपने कॉलीग्स पे, क्योंकि दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर इमोशंस. तो दैट इज अगेन अ डिफेंस मैकेनिज्म. आप वहां नहीं निकाल पाए, वहां कंट्रोल करने की कोशिश की तो कहीं और कर रहे हैं. फिर होता है प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन का मतलब है जो चीज आप अपने आप नहीं कर पाए, आप चाहते हो कि वो आपके लिए कोई और करे. जैसे कि मैं जिंदगी में ये बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं नहीं बन सकी तो
बच्चों को
बच्चे बने. फिर आता है रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो इसका ये रीजन है, ये लॉजिक है इसकी वजह से. तो हम फिर अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि इमोशनल ब्रेकडाउन ना हो. फिर आता है स्टेज, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं रिग्रेशन. रिग्रेशन का मतलब है कि हम अपने बचपने में पहुंचते, बचकानी हरकतें कई बार हम करते हैं, छोटे बच्चों के जैसे एक्ट करते हैं, बहुत परेशान होते हैं तो हम बच्चों जैसा बिहेव करने लग जाते हैं. तो वो कहते हैं रिग्रेशन. उसे उस डिफेंस मैकेनिज्म को टू अवॉइड दैट इमोशन ऑफ पेन, हम रिग्रेशन में चले जाते हैं, हम बचपने में चले जाते हैं, वैसी हरकतें करते हैं. फिर कहते हैं एक स्टेज होता है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का मतलब है कि आप पॉजिटिवली अपने इमोशन को यूज करते हैं. जैसे कि कहते हैं कि जो लोगों को बहुत गुस्सा आता है दे बिकम गुड बॉक्सर्स.
जी.
अगर वो बॉक्सिंग में उस चीज को यूज कर ले तो उन्होंने पॉजिटिवली अपने एक एंगर को उन्होंने बॉक्सिंग में उतार कर उस
कंट्रोल कर लिया,
और वो प्रोडक्टिव भी हो गया उनके लिए. एक होता है रिप्रेशन. रिप्रेशन का मतलब है हम पूरी तरह से चीज को भुलाने की कोशिश करते हैं. तो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो हमें हमारे जो इमोशंस हैं उनके साथ डील करने में मदद करते हैं. जब हम कार्ल यूंग की बात करते हैं, ये तो था हमारा साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव जो कि हमको फ्रॉइड ने, जो कि सिगमंड फ्रॉइड वाज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस पर्सपेक्टिव. अगर हम कार्ल यूंग की बात करें तो उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बेसिस पे जो है वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा था कि ये जो साइको एनालिसिस में हम सेंट्रल रोल सेक्स का और एग्रेशन का ह्यूमन लाइफ में मानते हैं, ही वॉज टोटली अपोज्ड टू दिस पर्सपेक्टिव. कि हम हर तरह से पूरी तरह से सेक्सुअल और एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स को जो है हम उसके बेसिस पे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते. रादर उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो हम लोग कुछ भी चीज अपने जीवन में करते हैं, वी आर मोटिवेटेड बाय द जनरल साइकोलॉजिकल एनर्जीज. उन्होंने कहा कि जो डीपेस्ट पाथ है साइक का, हमारी पर्सनालिटी का, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है. ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस वो चीज होती है जो कॉमन है हर एक इंडिविजुअल के लिए. जैसे कि हम सब लोगों को, मोस्टली हम सब लोगों को, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर स्केर्ड ऑफ स्नेक्स. कलेक्टिव अनकॉन्शियस, हमने कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन ये हमारे अनकॉन्शियस में जो है हमने एक्वायर किया है कहीं ना कहीं से. ये चीज़ जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कहीं ना कहीं सेम कैपेसिटीज होती हैं. जैसे कि अपने लिए खाना जो है, खाने का इंतजाम करने की कैपेसिटीज, अपने लिए अपने आप को सर्वाइव करने की तो ये कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है उसके बेसिस पे हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बेसिस पे हम इंडिविजुअल्स को डिफाइन करते हैं. और उन्होंने कहा कि कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे को कुछ आर्केटाइप्स होते हैं जो हमारी अनकॉन्शियस में जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में आर्केटाइप्स होते हैं. आर्केटाइप्स का मतलब कि हमारी कुछ प्री डिस्पोजिशंस होती है कुछ थॉट्स के लिए. जैसे कि जैसे मेरे फादर या मेरे ग्रैंड फादर या मेरे ग्रैंड ग्रैंड फादर का नेचर था वो मैं लेके आई हूँ. That is, I have a predisposition to some things.
बिल्कुल.
I will always react in a calm manner to a emergency situation. So there are some predispositions. So इसके basis पे जो है हम लोग जो है वो individual की personality को define करते हैं. Karen Honey ने जो जब personality को define किया तो उन्होंने basic anxiety के basis पे जो था वो individual की personality को define करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि basic anxiety होती है कि is the feeling of a child of being isolated and एंड हेल्पलेस इन अ हॉस्टाइल वर्ल्ड. अगर इंडिविजुअल को इस तरह से लगता है, ये बेसिक एंजाइटी होती है कि वो हेल्पलेस है, तो वो ये चीज किस तरह से इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को जो है वो इफेक्ट करती है. और उन्होंने ज्यादा जो एम्फेसाइज किया था, ज्यादा इंपॉर्टेंस जो थी वो उन्होंने सोशल रिलेशनशिप्स पे जो थी दी थी, कि किस तरह के सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं और वो किस तरह से हमारे पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं. एल्फ्रेड एडलर जो थे उन्होंने बात करी थी कि हम लोग का पर्सनैलिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग ऑफ इनफीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी. उन्होंने कहा कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो सुपीरियोरिटी, उन्होंने बर्थ ऑर्डर के बेसिस पे जो था कि फर्स्ट चाइल्ड कैसा है, सेकेंड चाइल्ड कैसा है, थर्ड चाइल्ड कैसा है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने का जो था वो इस तरह से डिफाइन की थी. उन्होंने सेंट्रल ह्यूमन मोटिव कहा था कि इंडिविजुअल सिर्फ सुपीरियोरिटी के लिए ही हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं. वट एवर दे डू दे वॉन्ट टू डू इट टू गेट दैट सुपीरियर फीलिंग. मैं आज ये कर रही हूँ, इसके बाद मैं ये करूंगी, इसके बाद मैं ये करूंगी, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी सुपीरियर. इस बेसिस पे उन्होंने जो था वो जो था पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करी. और उन्होंने साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि इसके सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है. इसके अलावा उन्होंने साइकोसोशल पर्सपेक्टिव्स जो थे उस पर जो था वो ज़्यादा ध्यान दिया था. अगर मैं आगे ही कुछ पर्सपेक्टिव्स की बात करूँ तो ये तो था डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने किस तरह से जो था वो पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करी. अब एक ट्रेड थ्योरीज ऑफ जो
पर्सनैलिटी का,
ये जो ट्रेड थ्योरीज हैं ये इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं कि क्या क्या ट्रेट्स हैं आप में. ट्रेट्स का मतलब है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप में है. जैसे कि कुछ ट्रेट्स को इन्होंने कहा कि अपेरेंट ट्रेट्स होते हैं. अपेरेंट ट्रेट्स मतलब जो सामने दिखते हैं. जैसे कि ये इंडिविजुअल जो है वो, दिस इंडिविजुअल इज अ हैप्पी पर्सन, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग, मतलब ही ऑलवेज हेल्प्स अदर, कॉर्डियल है. तो ये तो है कि जो अपेरेंट ट्रेट्स हैं जो सामने दिखते हैं. कॉन्ट्ररी टू दिस उन्होंने कहा कि कुछ सर्फेस ट्रेट्स होते हैं. तो उन्होंने जो रेमंड कटेल थे उन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स और 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने कुछ सर्फेस ट्रेट्स की बात करी. उन्होंने कहा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिफरेंट कॉन्टिन्यूम पे, जैसे पीपल कैन बी ईदर रिजर्व्ड और आउटगोइंग, या तो वो रिजर्व्ड होंगे या वो आउटगोइंग होंगे, या इसके बीच में, इस इन दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं लाई करेंगे. जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट भी नहीं होते और एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होते, एम्बीवर्ट होते हैं. ना तो वो ज्यादा बोलते हैं ना वो कम बोलते हैं, सबके साथ नॉर्मल रहते हैं. तो उन्होंने कहा कि कुछ इस बेसिस पे उन्होंने इंडिविजुअल्स को डिफाइन करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉन्टिन्यूम्स. कॉन्टिन्यूम्स का मतलब एक एक्सट्रीम कॉन्टिन्यूस, Either reserved or outgoing or in between. इस तरह से उन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करी. फिर आता है कि आइजिंक, आइजिंक ने भी अपना थ्योरी प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि लोगों को आप चार तरीके से डिफाइन कर सकते हो. इधर दे आर इंट्रोवर्टेड और न्यूरोटिक, या इंट्रोवर्टेड और स्टेबल होते हैं, एक्सट्रोवर्टिक और न्यूरोटिक होते हैं, या एक्सट्रोवर्टेड और स्टेबल जो लोग होते हैं वो होते हैं. मतलब या तो आप बहुत ज्यादा लोगों से बात करेंगे और बहुत ज्यादा बात करेंगे और कहीं ना कहीं एंशियसनेस, वो न्यूरोटिक, वो वहम आपके मन में रहेगा, या फिर आप बहुत ज्यादा लोगों से बात करेंगे और आप स्टेबल होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके विपरीत या तो आप लोगों से बहुत कम बात करेंगे और वहमी भी होंगे, या फिर आप वहमी होंगे, एंजाइटी होगी आपको ज्यादा, या फिर आप बात कम करेंगे लेकिन आप एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होंगे. तो इसके बेसिस पे जो था उन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करी है. अब हम लोग अगर इसी में आगे चलें, जैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आता है जो है सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. अगर मैं सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात करूं तो इट वाज प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बैंडुरा. और उनका व्यू पॉइंट अगर सीधे से समझना चाहें तो उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है, अब माई बिहेवियर इज वॉट आई एम, वॉट माई पर्सनैलिटी इज, मैं जैसे बिहेव करती हूँ आई शो दैट वॉट माई पर्सनैलिटी इज. तो हमारा बिहेवियर बहुत ज्यादा जो है वो सोशल इंटरेक्शन से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड रहता है. उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसे हम सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं. सोशल पर्सपेक्टिव मतलब कि हमारा बिहेवियर बहुत हद तक जो है वो सोसाइटी में क्या चल रहा है, किस तरह की इंटरेक्शन हो रही है, उस पर डिपेंड करता है. लेकिन सोसाइटी में बहुत कुछ होता है, हम अपने दिमाग से किस तरह से उन चीज़ों को लेते हैं और चलते हैं, वो हमारे जो जो है पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने में काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहता है। जब हम इनकी बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो थॉट्स और एक्शंस होते हैं वो ऑल द सोशल वर्ल्ड में होते हैं जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ रेगुलेशन की हमें कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि हमें जो एनवायरमेंट से मिल रहा है हम वो लेते जाते हैं, हम अपने दिमाग से भी काम लेके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव था। देखिए जब हम लोग इतने पर्सपेक्टिव्स की बात करी, हम लोगों ने बात करी कि कार्ल गस्टव यूंग का क्या पर्सपेक्टिव है, कैरन हॉनी का क्या है, साइको एनालिटिक क्या है, बाद में एक पर्सपेक्टिव आया जिसे हम लोग ये भी कहते हैं कि दिस इज नोन एज द थर्ड फोर्स, क्योंकि पहले हम लोगों ने बात की अनकॉन्शियस की, फिर हम लोगों ने बात की सोशल कॉग्निटिव की, फिर हम लोग बात करेंगे अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की, जिसे हमने थर्ड फोर्स भी कहते हैं। इसके जो प्रोपाउंडर थे वो बेसिकली कार्ल रॉजर्स जो है, उन्होंने इस चीज़ इस पर्सपेक्टिव को प्रोपाउंड किया है। उन्होंने कहा है कि जो इंडिविजुअल होता है ना, उनमें कोई भी व्यक्ति है उसमें एक इनर स्ट्रेंथ होती है अपनी सभी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में। उन्होंने बेस्ट पॉजिटिव रिगार्ड की बात की है कि जो इंडिविजुअल है उनको देना चाहिए। इसका जब हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी के पास प्रॉब्लम लेके आता भी है तो सिर्फ जब वो हम बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम की तभी कहीं ना कहीं हमारे पास सोल्यूशन अपने आप मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो एक एक ह्यूमन बीइंग है उनमें इनेट ऐसा कैपेसिटी है इनेटली टू डू गुड इन लाइफ, तो वो ह्यूमन कैपेसिटीज को इसमें बहुत ज्यादा जो है वो एम्फेसिस दिया जाता है। इसी के साथ इसी पर्सपेक्टिव में ह्यूमनिस्टिक पे अब्राहम मास्लो ने बात करी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन मोटिव्स हैं वो हायरार्की ऑफ नीड्स में जो है उसको हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स में उन्होंने कहा था कि जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर हम हायरार्की बनाएं तो सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल को फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करना होता है, विच इज और बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान जो कि जीने के लिए जरूरी है। जब किसी का ये नीड्स फुलफिल होती हैं तो हम जाते हैं सेफ्टी नीड्स पे। सेफ्टी नीड्स होता है कि हम लोग को शेल्टर चाहिए, एक हम ऐसे कहीं पे भी नहीं रह सकते ना, वी हैव टू बी यू नो अवेयर एंड बी कॉन्शियस ऑफ दी सराउंडिंग्स। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रेडेटर्स आ रहे हैं वो हमें कोई खा जाए, हमें कोई जानलेवा हमला हो जाए, तो वी नीड सेफ्टी। तो सेकेंड जो हमारा मोटिवेशन रहता है इंडिविजुअल का वो हमेशा रहता है सेफ्टी नीड्स पे। जब ये नीड्स फुलफिल होती हैं तो हम लोग बिलोंगिंगनेस नीड्स पे जाते हैं, बिलोंगिंगनेस ऑफ लव नीड्स, मतलब नाउ वी नीड अ फैमिली, वी नीड पीपल अराउंड हमको, ताकि हम लोगों से बात कर सके, कोई वी आर सोशल एनिमल्स। जब ये नीड्स पूरी होती हैं फिर इंडिविजुअल मोटिवेटेड रहता है एस्टीम नीड्स पे, एस्टीम नीड्स पे कि अब मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, सब लोग मुझे जाने, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हमेशा हर एक लेवल पे। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हम पहले भी बात कर चुके हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द पाथ ऑफ मेच्योरिटी, कि नाउ यू आर मेच्योर इनफ, वट एवर यू हैव यू आर सेटिस्फाइड विद इट, यू आर हैप्पी विद वट एवर यू आर कंटेंटेड। तो सेल्फ एक्चुअलाइज इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो जिन्होंने अपने पोटेंशियल्स को फुली जो है वो यूज कर लिया होता है। अगर हम लोग महात्मा गांधी या जो टेरेसा है उनकी बात करें तो वो हम कहते हैं कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल थे। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने आप को पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लास्ट आता है सेल्फ ट्रांसेंडेंट मोटिव्स। तो अगर मैं यही बात करूँ तो हमारे पास डिफाइन करने के लिए साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी में बहुत कुछ है और उसके लिए समय बहुत कम है। मैं यही कहूंगी कि हमारे कुछ टॉपिक्स जो है आज में रह गए हैं, जैसे गुनास के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं या कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं या हम पर्सनालिटी को असेस कैसे करते हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो हम अपने आने वाले
अगले सेशन में करेंगे। बिल्कुल।